ಶಿರಸೆ ಹರೆ ಭವಭಯಗಬ್ಬಾಧುನಿಕದೇಪಣಂ ಸಿದ್ಧೇ ಜೀವಠಾಣ ಸಮಲಿನಗುಣಚೂಲಿಯಂ ಓಚಂ. ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಧೌಲಾ ಟೀಕಾ ಹೇ ಜೊ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ ಗ್ರಂಥ ಪರ ಲಿಖಿ ಹುಯಿ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಪುಷ್ಪದಂತ ಔರ್ ಭೂತಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಜಿನ್ಹೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಉಪದೇಶ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಇಸ್ಕಿ ರಚನಾ ಕೀ ಥಿ ಜೊ ಉಪದೇಶ ಹಮೇ ಮೂಲ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೇ. ಅಬ್ ಯಹಾಂ ಅಪ್ನಿ ಛಠಿ ಪುಸ್ತಕ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೇ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಅಭಿ ಅಂತರ್ ಪಡಾ ಹೇ ಅಪ್ನೆ ಮೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮೇ. 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಆಜ್ ಹಮ್ ಶುರು ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ ಛಠಮೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೋ ಅಪ್ನಾ ಯಹಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ನಾಮ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಸಮಾಪ್ತ ಹುವಾ ಥಾ ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ಸ್ಥಾನ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ಚಾಲೂ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೇ. ತೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ಮೇ ತೊ ಹಮ್ನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೋ ಕೆ ನಾಮ ದೇಖೇ ಥೆ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತಿಯಾ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಹೇ ಉಸ್ಕಿ ಸವಿಸ್ತರ ಹಮ್ನೆ ಚರ್ಚಾ ಕೀ ಥಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮುತ್ಕೀರ್ತನ್ ಮೇ. ಜೈಸೆ ಹಮ್ನೆ ಜ್ಞಾನಾವರಣ ಕಿ 5 ದೇಖಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಾ, ದರ್ಶನಾವರಣ ಕಿ ಕಿತನಿ ದೇಖಿ 9, ಮೋಹನಿಯ ಕಿ ಯಾದ ಹೇ ಸಬ್ ಹಾಂ 28, ದರ್ಶನ ಮೋಹನಿ ಕಿ 3 ಔರ್ ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನಿ ಕಿ 25, ಫಿರ್ ಅಂತರಾಯ ಕಿ 5, ವೇದನೀಯ ಕಿ 2, ಆಯು ಕಿ 4, ನಾಮ ಕಿ 93, ಉಸ್ಮೇ ಪಿಂಡ ಅಪಿಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಸ್ ತರಹ ಸೆ ಹಮ್ನೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಔರ್ ಗೋತ್ರ ಕಿ 2. ಯೇ ತೊ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಭೇದ ಉಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹಮ್ನೆ ಕೀ ಥಿ ವಹಾಂ ಪರ್. ಔರ್ ಅಭಿ ಹಮ್ ದೂಸರಾ ಜೊ ಅಧಿಕಾರ ಹೇ ಯೇ ಚೂಲಿ ಕಾ ನಾಮ ಕಾ ಜೊ ಛಠಾ ಜೊ ಛಠಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೇ ನಾ ಉಸ್ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೀ ವೊ ಚೂಲಿ ಕಾ ಹೇ. ತೊ ಫಿರ್ ಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಚೂಲಿ ಕಾ ಚಲೇಗಿ ಆಜ್ ಸೆ. तो उसमें अपना ये अधिकार का नाम है स्थान समुत्कीर्तन. अब यहाँ पहले तो प्रकृतियाँ बता दी, अब वो प्रकृतियों के स्थान बताने वाले हैं. तो प्रकृतियों के स्थान और उसका समुत्कीर्तन, समुत्कीर्तन यानी उसका विवेचन, प्ररूपण, निरूपण, विस्तार से व्याख्यान, उसको समुत्कीर्तन कहते हैं. तो ये स्थान यानी क्या, तो यहाँ बंद के स्थान बताएंगे. अभी पहले में पहले तो बंद के स्थान बताएंगे, मैंने आगे नहीं देखा है. तो उदय के स्थान भी होते हैं और सत्व के स्थान भी होते हैं. तो बंधक के स्थान का अर्थ क्या होता है, जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्थान है जहां 5 प्रकृतियों का बंध होता है, और ऐसे कौन से स्थान है कि जहां 2 या 3 प्रकृतियों का बंध होता है. अश्विन भाई आपको मालूम है, आओ देवेंद्र भाई आपको मालूम है. हाँ, पहले गुणस्थान में तो 5, ये तो नक्की हो गया. देवेंद्र भाई आपको कुछ याद है कि नहीं, कि आज कुछ नहीं याद करना है? हाँ, बहुत बड़ा गैप हो गया ना. हाँ, तो ऐसा कौन सा गुणस्थान है कि जहाँ 3 ही प्रकृतियों का बंध होता है ज्ञानावरण के? हाँ, छठे सातवें. आप क्या कहते प्रेरणा बेन? हाँ, अरविंद भाई क्या कहते? हाँ, अरविंद भाई कहते 10वें तक तो सभी 5 का ही बंध होता है, यानी बंध की अपेक्षा 5 ही ज्ञानावरण हमेशा बंधेगी. कहाँ से कहाँ तक? पहले गुणस्थान से 10वें तक. अभी इसकी चर्चा आने वाली है. तो हम कहेंगे उसका एक ही स्थान है, 5 प्रकृतियों का बंध रूप एक ही स्थान है. ज्ञानावरण की बात चल रही है. अब दर्शनावरण की तो 9 प्रकृतियां हैं, तो जहां 9 के 9 बनती है ऐसा एक स्थान होगा. याद है कौन सा है ऐसा? नहीं, देखो ऐसा उसमें अभी हमने बाकी लोगों का तो अभ्यास नहीं हुआ है. बंद की विच्छित्ति हमने पहले पढ़ी थी, तो उसमें निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला की बंधक की विच्छित्ति देखी थी, यानी बंधक कहाँ तक है. तो पहले में भी है और दूसरे में भी है, उस दूसरे के बाद बंध नहीं है. यानी इसका अर्थ क्या हुआ, पहले गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में दर्शनावरण की 9 के 9 प्रकृति बनती है, भले जागृत अवस्था हो या निद्रा में हो, बनती तो सभी है. तो तो हम कहेंगे नौ प्रकृतियों का एक बंध का स्थान है, कहाँ पर? पहले और दूसरे गुण स्थान में। उसके बाद कितनी प्रकृतियां बंधेगी? तो छह ही बंधेगी। कौन सी छह आप बता सकते हैं मंजू भाई? चक्षु दर्शन, चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा और प्रचला, क्योंकि तीन की हमने देखी थी ना अभी। तो ये छह प्रकृतियों का बंध का स्थान कहलाएगा। तो कहाँ तक उसका बंध है? तो छह के छह बंध रहे, कहाँ तक बंधेंगे? निद्रा और प्रचला की जहाँ बंध विच्छित होती है, वहां तक तो छह प्रकृतियों के बंध है। तो हम कहेंगे वहां तक छह प्रकृतियों का बंध का स्थान है, तो हम तीसरे से लेकर आठवें के छठे भाग तक हम कहेंगे, तो ये पहले भाग तक, हाँ पहले भाग में बंध की विच्छित है, तो वहां तक तो छह का बंध होता है, और बाद में चार का बंध होगा, तो चार के बंध का एक स्थान, इसको स्थान कहते हैं। इसी तरह हम हर एक प्रकृतियों के यानी हर एक कर्म के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, और जब पढ़ेंगे तो वो विच्छित्ति का भी अपना बार बार, अब जब भी हम ये विषय आएगा तो वो भी अपना क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ना यहाँ शुरू करेंगे। पहले स्थान किसे कहना उसकी बात हमने देखी। तो जिन जिन गुणस्थानों में विशिष्ट नंबर ऑफ प्रकृति बनती है, तो उसके भले तीन गुणस्थान हो, चार गुणस्थान, तो उसको हम स्थान कहेंगे। अब यहाँ 79 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये द्वितीय चूलिका यहाँ से प्रारंभ होती है, विधि या चूलिया लिखा ना पेज नंबर, पेज के ऊपर। हाँ, अब नीचे जो पहला नंबर का सूत्र है उसको पढ़ते हैं। यहाँ सूत्र ओरिजिनल में सूत्र का नंबर नहीं लिखा है, वहाँ एक लिख देना। देखो पहले ही लाइन में एतो ठान समुत्कीर्तनम वर्ण इस्सामो। अब इससे आगे स्थान समुत्कीर्तन का वर्णन करेंगे, यानी अब इस द्वितीय चुलिका में स्थान समुत्कीर्तन का वर्णन चलेगा। अब शंका, स्थान किसे कहते हैं? समाधान, जिस संख्या में अथवा जिस अवस्था विशेष में प्रकृतियां पाई जाती है उसे स्थान कहते हैं। अभी हमने देखा था ना ज्ञानावरण की पांच बनती है, तो जहां तक बंद है पांचों ही बंधेगी, और जहां उनका बंद रुक जाता है तो ज्ञानावरण की एक भी नहीं बंधेगी, तो उसका एक स्थान हुआ, तो वो संख्या है ना उसकी। और दर्शनावरण में हमने अलग देखा, नौ का एक स्थान है, नौ संख्या है ना, नौ का एक स्थान है, छह का एक स्थान है और चार का एक स्थान है। तो क्या कहते हैं, जिस संख्या में अथवा जिस अवस्था विशेष में, अवस्था विशेष है ना, अभी गुणस्थान देखेंगे यहाँ, जिन जिन गुणस्थानों में वो बंधेंगे तो उनका मिलकर एक स्थान कहलाएगा। प्रकृतियां पाई जाती है, अब यहाँ बंधने की बात नहीं की उन्होंने, प्रकृतियां पाई जाती है, क्योंकि क्या है कि बंध के भी स्थान हो गए अलग अलग, उदय की अपेक्षा देखेंगे तो उसके भी स्थान हो गए, ऐसे स्थान होते हैं, इसलिए प्रकृतियां पाई जाती, इतना ही लिखा उन्होंने, उसे स्थान कहते हैं। स्थान, स्थिति और अवस्थान, ये तीनों एकार्थक है, यानी एकार्थवाची है, तीनों ही का अर्थ समान है, सेम है। समुत्कीर्तन, वर्णन और प्ररूपण, इनका अर्थ एक ही कहा गया है, यानी समुत्कीर्तन कहो या वर्णन कहो या प्ररूपण कहो या प्ररूपणा कहो, एक ही बात है। स्थान की समुत्कीर्तना को स्थान समुत्कीर्तन कहते, यानी स्थान का जो वर्णन है उसको स्थान समुत्कीर्तन कहते, क्योंकि अपने द्वितीय चुलिका का नाम ही स्थान समुत्कीर्तन है। पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो प्रकृति समुत्कीर्तन था, वहाँ प्रकृति यानी मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए थे, इस अधिकार में उन प्रकृतियों के स्थान बताए जाएंगे, उनका वर्णन अर्थात व्याख्यान करेंगे, यह अर्थ कहा गया है। फिर शंका, यह स्थान समुत्कीर्तन नाम की चूलिका किस लिए आई है? चूलिका का अर्थ हमने पहले देखा था कि जो पहले विषय आया है, जो नहीं भी आया है उसका विशेष वर्णन करने के लिए ये जो एक्स्ट्रा अधिकार लिखे जाते हैं चूलिका, तो उसकी चूलिका क्यों लिखी है? तो उसका समाधान, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन नाम की चूलिका में जिन प्रकृतियों का प्ररूपण कर आए हैं, उन प्रकृतियों का बंध क्या एक साथ होता है अथवा क्रम से होता है? अब ये प्रकृतियों के बारे में पहले प्रश्न पूछा गया कि ये क्या सभी प्रकृतियों का बंध एक साथ होता है क्या? फिर मूल प्रकृतियों की बात करेंगे और उत्तर प्रकृतियों की भी, तो क्या एक साथ होता है या अलग अलग होता है या क्रम से होता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछेंगे, ऐसा पूछने पर इस प्रकार होता है यह बात बतलाने के लिए यह स्थान समुत्कीर्तना नाम की चूलिका आई है। यानी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अब ये ज्ञानावरण की है, क्या सभी एक साथ बनती है क्या अलग अलग बंधेगी? जब मति ज्ञान चल रहा है तब मति ज्ञानावरण बंधेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो वहां बताएंगे कौन सी प्रकृतियां एक साथ बनती है या कौन कौन सी बनती है, कौन से ग्रुप में बनती है, उसकी बात अब आएगी। ऊपर दो नंबर का सूत्र, तम जहां वह स्थान समुत्कीर्तन जैसे, यानी वो किस तरह से है, ऐसा प्रश्न पूछा है तम जहां करके। वह स्थान समुत्कीर्तना किस प्रकार कही जाती है, ऐसा पूछने पर इस प्रकार कही जाती है यह बतलाते हुए आचार्य पहले स्थानों के ही स्वरूप संख्यान का निरूपण करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। यानी वो स्थान समुत्कीर्तन इस तरह से है, ऐसा भी बतलाएंगे। देखो नीचे जरा फुटनोट देखते हैं, एक गोमटसार जो कर्मकांड है ना, उसमें वो पूछा है किम स्थानम, यानी स्थान किसे कहते हैं, स्थान क्या है? एकस्य जीवस्य एकस्मिन समये संभवती नाम समूहः, के एक जीव के एक समय में जो संभवते है, कितनी प्रकृतियां बंधेगी या कितने का उदय होगा या कितने के वो सत्व होगा, उसको वो स्थान समुत्कीर्तन कहेंगे। वही बात आगे भी, अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे 80 पेज पर आए हम, तीन नंबर का सूत्र पहले ऊपर पढ़ते हैं प्राकृत में। तम यानी वह क्या स्थान, मिच्छादिष्ठिस व शासन सम्मादिष्ठिस व सम्मा मिच्छादिष्ठिस व असंजद सम्मादिष्ठिस व संजदा संजदस्य व संजदस्य व, क्या कहते हैं? वह प्रकृति स्थान कह सकेगा, प्रकृति स्थान, अच्छा यानी बंधने की अपेक्षा से, वह प्रकृति स्थान मिथ्या दृष्टि के अथवा सासाधन सम्यक दृष्टि के, सम्यक मिथ्या दृष्टि के, असंयत सम्यक दृष्टि के, संयता संयत के और संयत के होता है, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य बंधकों का अभाव है। इसमें से क्या समझे, थोड़ा भी हम अपने भी विचार करेंगे स्वयं अभी, प्रेरणा बिना आप कह सकती हो? देखो पहले हम ऐसा देखेंगे, बंध कौन करता है, कौन कौन से गुणस्थानों में बंध है, हाँ पहले से लेकर हाँ दसवें तक, आप क्या कहते, तेरहवें तक है, क्योंकि साता वेदनीय का बंध है ना बाद में भी। देखो हाँ दसवें तक तो सांप्रदाय जिसको हम कहते कषाय के साथ, यानी चारों प्रकार का बंध है, स्थिति अनुभाग वगैरह सब, परंतु ग्यारहवा बारहवा तेरहवें में तो हमने देखा था साता वेदनीय का बंध होता है, वो इरियापथ उसको कहते हैं ना, वो तो योग है ना वहां पर। तो बंध किसको नहीं होगा, कौन से गुणस्थान वाले को, चौदहवें वाले को नहीं होगा। तो तेरहवें तक के जीवों को हम बंधक कहेंगे, क्योंकि उनके बंध पाया जाता है। तो वही यहां गिनाया है किस किस को बंध है, मिथ्या दृष्टि को है, पहले वाले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को और संयत को। तो संयत शब्द से कहां तक लेना है, छठे से तेरहवें तक। वो कहाँ तक लेना वो अपने को मालूम होना चाहिए। क्या रे, यहाँ तो संयत लिख दिया उन्होंने, परंतु वो संयत में से अर्थ निकालना चाहिए हमें। देखो यहाँ देखते फिर से दोबारा, वह प्रकृति स्थान यानी तम शब्द से वो, तो वह यानी वह प्रकृति स्थान यानी वह स्थान, स्थान की बात है ना, बंध के स्थानों की बात चल रही है, वो कहाँ कहाँ पर है। तो मिथ्या दृष्टि के है, सासाधन समय दृष्टि के है, सम्यक मिथ्या दृष्टि के है, असंयत समय दृष्टि के है, संयता संयत के है, और संयत के होता है, संयतों को भी है, क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य बंधकों का अभाव है। यहाँ मिथ्या दृष्टि आदि पदों में प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति जानना चाहिए। या मिथ्या दृष्टि के लिखा है ना, मिथ्या दृष्टि स, परंतु वहाँ वह स्थान मिथ्या दृष्टि यानी वो प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगाइए। अतएव मिथ्या दृष्टि स्थान, अभी स्थान कौन कौन से है अगर कहेंगे तो मिथ्या दृष्टि स्थान, सासाधन सम्यक स्थान, ऐसा कहेंगे हम, सासाधन सम्यक दृष्टि स्थान इत्यादि प्रकार से संबंध करना चाहिए। ये स्थान उन्होंने बताए पहले पहले, स्थान कौन कौन से है, तो ये मिथ्या दृष्टि स्थान, सासाधन स्थान, सम्यक मिथ्यात्व स्थान, इस तरह से जहां जहां बंध है उसमें स्थान है, ऐसा कहा उन्होंने। पहले तो जनरल बात की कि सभी प्रकृतियों के बंध के स्थान कौन कौन से है, तो 13 गुणस्थान, पहले से 13 गुणस्थान जो है, प्रत्येक गुणस्थान एक एक स्थान है, ऐसा कह दिया, क्योंकि वहां तो बंध ही जनरल बात की थी, कौन सी प्रकृति है उसकी चर्चा नहीं की थी। अब हर एक प्रकृति की अलग अलग चर्चा करेंगे तो उसके बंध के स्थान भी अलग अलग होंगे। जैसे अभी हमने देखा था ज्ञानावरण का बंध स्थान कौन सा है, तो पहले से लेकर 10वें तक का एक बंध स्थान होगा, ख्याल है ना। हाँ। और अगर हम पूछेंगे मिथ्यात्व प्रकृति का बंध स्थान कौन सा है, एक पहला गुण स्थान ही होगा, ख्याल है। तो ऐसे हम अलग अलग प्रकृतियों के बंध स्थान यहां देखने वाले हैं। शंका, मिथ्या दृष्टि आदि बंधकों के स्थान यह नाम कैसे हुआ, ये बंधक है तो मिथ्या दृष्टि को ही उन्होंने स्थान कह दिया है, तो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसी शंका है। समाधान, बंध की कारणभूत प्रकृतियां जिस बंधक जीव में रहती है, इस प्रकार स्थान शब्द की व्युत्पत्ति करने से, यह स्थान शब्द कैसे तैयार हुआ तो उसको कहते हैं उसकी व्युत्पत्ति, यानी वो शब्द कैसे तैयार हुआ, तो वो इन्वर्टेड में जो लिखा है ना उसको फिर पढ़ते, देखो पहले लाइन से, बंध की कारणभूत प्रकृतियां जिस बंधक जीव में रहती है, बंधक जीव ने जो बंध कर रहा है वो बंधक, उसको बंधक कहा, और उसमें जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है वे प्रकृतियां, इस तरह स्थान शब्द की उन्होंने व्युत्पत्ति की। मिथ्या दृष्टि आदि बंधकों के स्थान यह नाम सार्थक हो जाता है, क्योंकि वे प्रकृतियां उस जीव में रहती है ना, अभी उसके बंधी जाती है, इसलिए उसको ही स्थान कहा, उस जीव को या उस गुण स्थान को। संयत, अभी संयत के बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो खाली संयत स्थान इतना ही लिख दिया, संयत के स्थान होता है ऐसा कहने पर प्रमत्त संयत आदि 8 ही संयत गुण स्थानों को ग्रहण करना चाहिए। ये कौन से 8, कौन, कोई नाम बताएगा। हाँ, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, हाँ, क्षीण मोह, संयोग के लिए, बहुत अच्छा, ये 8 स्थान प्रमत्त संयत से लेकर, तो 8 ही संयत गुण स्थानों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संयत भाव की अपेक्षा उनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए सबको मिलकर संयत कह दिया। यहाँ 9वां अर्थात अयोगी केवली गुणस्थान नहीं ग्रहण किया गया है, क्योंकि उनके बंधक पने का अभाव है। संयत कहने से अयोगी को भी ले लेना ऐसा कोई समझे तो वो नहीं, क्योंकि वहां तो बंध है ही नहीं है, यहाँ बंधक जीवों को ही स्थान कहा है, इसलिए अयोगी केवली गुणस्थान बंध से रहित है तो वह जीव बंधक नहीं है, तो उसको स्थान भी नहीं कहेंगे। अब 4 नंबर का हम सूत्र पढ़ेंगे। नानावरणीयस्य कम्मस्य पंचपयडियो अभिनिबोध्य गाणावरणीयम अभिनिबोधीय, वो घी हो गया, धी करना उसको, अभिनिबोध्य नाणावरणीयम सुदनाणावरणीयम ओधिनाणावरणीयम मणपज्जव नाणावरणीयम केवल नाणावरणीयम चेदी। ये तो लिस्ट हमने पहले प्रकृति समुत्कीर्तन में देखी थी, अभी बहुत दिन हुए ना इसलिए हमारे लिए फिर दोबारा लिख दिया उन्होंने। देखो ज्ञानावरणीय कर्म की पांच प्रकृतियां हैं, ये ज्ञानावरणीय मूल प्रकृति हुई और उसके ये जो भेद है उसको हम कहेंगे उत्तर प्रकृति। कौन कौन से देखिए, आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनपर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। शंका, पहले प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका में कहे जाने के कारण पुनरुक्त होने से यह सूत्र पुनः नहीं कहना चाहिए। पुनरुक्त यानी रिपीटिशन, तो पहले यह हो चुका है सूत्र तो यहाँ रिपीटिशन हो गई ऐसा कहते हैं, तो ये सूत्र यहाँ नहीं लिखना चाहिए था ऐसा शंकाकार का कहना है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि सभी जीवों को धारणा आवरणीय कर्म के क्षोभ श्रम का अभाव है। ये नहीं समझे आप, समझ गए? हाँ, धारणा शक्ति जो है, धारणा यानी वो कोई बात धारणा तक पहुंचे तो वो कालांतर से भी फिर स्मरण में आती है। जो धारणा तक नहीं गए वो तो बाद में उसका स्मरण नहीं हो सकता। तो धारणा का आवरण जिसको है तो जो धारणा में नहीं रह सकता, भूल जाता है, तो उसके क्षोभश्रम का जिनको अभाव है, यानी सभी जीवों का, सभी जीवों को ये बात धारणा में नहीं रहती है, बहुत से तो भूल जाते हैं। यदि सर्व जीवों के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थात जाना गया, अर्थ जाना गया अर्थ है ना जान, जिन्होंने जान लिया है, अर्थ है ना कोई भी पदार्थ, टाकी से वो गया के बाद है, वो अर्थ के बाद चाहिए। क्या कहते हैं, यदि सर्व जीवों के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थात जाना गया अर्थ टाकी से उकेरे गए अक्षर के समान नहीं विनिष्ट होता तो पुनरुक्त दोष होता। क्या कहते हैं, टाकी से उकेरे हुए, समझे आप, टाकी यानी वो तो ये छिन्नी और वो ये टाकी के घाव कहते हैं ना हथौड़ी से, जैसे कोई शिलालेख लिखते हैं पर्वतों पर या मूर्ति बनाते हैं वो क्या कहते हैं, टाकी से उकेरे हुए कहते हैं उसको। तो वो अक्षर कालांतर के बाद भी नहीं मिटता है, जैसे हम देखते हैं ना वो शिलालेख देखते हैं या मूर्तियां देखते हैं या कोई ऐसे जिसको पत्थर के ऊपर जो हथौड़ी और चिन्नी से बनाए हुए कोई जो शिलालेख है, अक्षर है या कोई डिजाइन है, वो कालांतर के बाद भी वैसे ही रहते हैं। तो यदि सभी जीव जाने हुए पदार्थ को ऐसे टाकी से उकेरे हुए के समान यदि वो नहीं मिटता तो हम कहेंगे ये पुनरुक्त दोष है। परंतु ऐसा तो सभी जीवों के बारे में नहीं होता है, ख्याल है ना, ये बात बताना चाहते हैं। तो पुनरुक्त दोष, ये समझ में, ये दृष्टांत दिया, किंतु ऐसा है नहीं, ऐसा ही नहीं, यानी सभी जीवों के द्वारा जो ग्रहण किया है वो बाद में वो भूल जाते हैं, क्योंकि अभी उसके हमारे लिए यहाँ उदाहरण दिया दृष्टांत फिर। जल में लिखे गए अक्षर के समान, ये कॉमा देना यहाँ, यानी पढ़ने के लिए अपने को ठीक रहेगा, ग्रहण किए गए अर्थ का कितने ही जीवों में विनाश पाया जाता है। ऐसे जल के ऊपर अक्षर लिख दो तो लिखते लिखते वो मिट जाता है, वैसे ग्रहण किया गया अर्थ, ग्रहण किया गया अर्थ है ने जाना हुआ अर्थ, अर्थ है ने पदार्थ, पदार्थ है ने भी यहाँ सूत्र की बात चल रही, तो जो जाना है विषय, कोई भी विषय हमने जान लिया है, उसके कितने ही जीवों में विनाश पाया जाता है, यानी वो जीव भूल जाते, विनाश होता है ने अर्थ का, विनाश होता है, जाने गए अर्थ का विनाश होता है ने, वो भूल जाते हैं। लिखा ना ग्रहण किए गए अर्थ का, ग्रहण करना यानी जानना, ये जानना शब्द हमें उसके लिए हमेशा ग्रहण करना, ग्रहण करना ऐसा शास्त्र में आता है। आत्मा को ग्रहण करो और राग द्वेष को छोड़ो, यानी आत्मा को जानो और राग द्वेष को जानना छोड़ो, ऐसा कहते हैं। तो हम राग द्वेष को ही छोड़ने के पीछे लगते हैं ना। तो ये ग्रहण करना यानी जानना, यानी जीव भूल जाते हैं। इसलिए अभी अपने विरुद्ध है अपना, भ्रष्ट संस्कार वाले शिष्य के स्मरण कराने के लिए, भ्रष्ट संस्कार जिसके अभी ये जो संस्कार है ना, जो ज्ञान में जाना है उसके संस्कार अभी भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, मिट गए हैं, यानी वो भूल गया है, तो उसको कहते हैं भ्रष्ट संस्कार वाले शिष्य के, ऐसा जो शिष्य है उसको स्मरण कराने के लिए, शिष्य को पहला का विषय स्मरण कराने के लिए यह सूत्र कहना चाहिए। क्योंकि ज्ञानावरण की कौन सी 5 प्रकृतियां थी ये तो हम भूल गए हैं, इसलिए दोबारा स्मरण कराने के लिए यह सूत्र यहाँ लिखा है। यह कोई दोष नहीं है, यह बात आचार्य बताते हैं। अब ऊपर हम सूत्र पढ़ेंगे फिर 5 नंबर का। एदासिम पंचन्नम पयडीनम एकमिचेव ठाणम बंधमानस। इन 5 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। दूसरे शब्द में ऊपर लिखा ना, एदासिम पंचनम पैड में एकमिचेव ठाणम बंधमानस। बंधमान यानी बंध करने वाले, बंध करने वाले जीवों का एक ही स्थान है। ज्ञानावरणीय के 5 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीवों का एक ही स्थान है। कौन सा है वो? 1 से 10 तक। तो सबको इकट्ठा लिया, किस अपेक्षा भी अपनी अपेक्षा कौन सी है? ज्ञानावरण की बंधने वाली प्रकृतियों की अपेक्षा। यहाँ उदय की अपेक्षा नहीं लिए, ना ही सत्व की अपेक्षा लिए। हाँ, क्योंकि उदय कहाँ तक होगा? 12वें तक, परंतु बंध तो 10वें तक है। तो बंधमानस से ऐसा शब्द लिखा उन्होंने। देखो नीचे फिर अब हम दोबारा उसका अर्थ देखते हैं। इन 5 प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का, एक्चुअली जीवों का चाहिए, एक ही भाव में अवस्थान है। अच्छा हाँ, एक जीव की अपेक्षा देखेंगे। देखो उसका अर्थ नीचे देखते हैं। इन पूर्व सूत्र में कही गई 5 प्रकृतियों के बांधने वाले जीव का 5 इस संख्या से उपलक्षित एक ही अवस्था विशेष में स्थान अर्थात अवस्थान होता है, यानी सबको मिलकर एक ही उसका भाव, यानी कौन से ज्ञानावरण का बंध उस अपेक्षा से उसको एक ही भाव है, ऐसा कहेंगे। और उस भाव में वो सभी जीव अवस्थित है, रहते हैं, वो उनका स्थान है। ही लगाए ना, एक ही भाव में। तो शंकाकार पूछता है सूत्र में एवकार पद किस लिए दिया है? देखिए ऊपर एकम्मी चेव लिखा है ना, एव यानी ही, जिसको हिंदी में हम ही कहते हैं, या मराठी में च कहते हैं ना एकच, हिंदी में एक ही भाव, तो ही लगाया, तो उसको एवकार पद कहते हैं, एव। उसका समाधान, ज्ञानावरणीय कर्म की 1, 2, 3 और 4 संख्या से उपलक्षित प्रकृति संबंधी अवस्था में अवस्थान का प्रतिषेध करने के लिए सूत्र में एवकार पद दिया है। ऊपर क्या लिखा है? एदासिम पंचन्नम पयडीनम एकम्मी चेवट्ठानम। ये 5 ही प्रकृतियों का एक ही स्थान है, ऐसा कहते हैं। यानी उसका अर्थ क्या है? कहीं एक प्रकृति बनती हो, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, उसका निषेध करने के लिए जिसको ज्ञानावरण बनता है वो 5 ही प्रकृतियां हर समय बनती है। देखो इसको निरंतर बनने वाली प्रकृतियां हैं, ऐसी कई प्रकृतियां हैं जो निरंतर बनती है, जब तक बंधेगी निरंतर बंधेगी और सभी बंधेगी, उसमें ज्ञानावरण का नंबर है। तो जहां जिसकी बंध की विच्छित्ति होती है वहां तक जो बंध है वो तो सबका होगा। जैसे दर्शनावरण का हमने देखा था, 9 बनती है पहले और दूसरे गुणस्थान में, तो हर समय 9 के 9 बंधेगी। उदय तो जागृत अवस्था में, वो निद्रा 5 ही निद्रा का उदय नहीं होता है जागृत अवस्था में, फिर भी जागृत अवस्था में 5 ही निद्रा कर्म बनते हैं, ख्याल है? वैसे किसी भी ज्ञान में, क्यों नहीं, मति ज्ञान में वो उपयोग रूप है, या शुद्ध ज्ञान में, या कोई मनपरे ज्ञान भी है, फिर भी उसको बंद तो ये पांचों ही ज्ञानावरण का हो रहा है। और वो कहां से कहां तक? पहले से दसवें तक, तो सबका मिलकर एक स्थान कह दिया। देखो तो 1, 2, 3, 4 ये संख्या से उपलक्षित प्रकृति संबंधी अवस्था में अवस्थान का प्रतिषेध करने के लिए, यानी उनका ऐसा अलग अलग कहीं बंद होता हो इसका निषेध करने के लिए एव शब्द डाला है। सूत्र में एवकार पद दिया है, अर्थात सभी जीवों के दसवें गुण स्थान तक पांचों ही प्रकृतियों का बंध होता रहता है। ज्ञानावरण का बंध हमने देखा है, वो तो अघाती प्रकृति है, घाती प्रकृति है और अप्रशस्त प्रकृति है, और जीव बहुत से मानते हैं कि स्वाध्याय करने से उसका क्षय हो जाएगा, क्षोभशम हो जाएगा या कुछ होगा, परंतु बंध तो नहीं रुकेगा, ख्याल है ना? ऐसे स्वाध्याय से क्षय नहीं होता, उसका तो बंध भी होगा। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्ञानावरण बंद रहा है कि नहीं बंद रहा? हाँ, वो तो दसवें तक बंधेगा।
देखो कई लोगों का ऐसा मानस है, कहो या ऐसी मान्यता है कि शुभ भाव करने से बंधन नहीं होता है या निर्जरा होती है। तो यहाँ तो दसवें गुण स्थान तक, अभी दसवें गुण स्थान तक के जीवों को तो सिर्फ शुभ भाव ही होता है, वहाँ अशुभ भाव का तो सवाल ही नहीं है, फिर भी उनको बंध होता है। यहाँ तो ज्ञानावरणी की सिर्फ बात है, कर्णानियोग के विषय पढ़ने से बहुत सारी भ्रांतियां अपनी नष्ट होती है।
हम देखते हैं ना, शास्त्र दान करते हैं और ऊपर लिखते भी है ज्ञानावरण के अक्षय के लिए हम ये दान कर रहे हैं, ऐसा मानते भी है ना, ये मान्यता का निषेध है वहां पर। यानी ऐसे कोई शुभ भाव से तो उसका बंध नहीं रुकता है, ना ही उसकी कोई निर्जरा हो जाती है। अब आगे देखेंगे छठे नंबर का सूत्र, ये समझ में आता है ना, नहीं समझे तो पूछ लेना फिर दोबारा। हाँ, कोई विषय नहीं समझे तो पूछ लेना। देखो छठे नंबर का सूत्र पहले ऊपर से पढ़ते, तम मिच्छा दिठिस वा शासन सम्मा दिठिस वा सम्मा मिच्छा दिठिस वा असंजद सम्मा दिठिस वा संजदा संजदस वा संजदा वा संजदस वा, वह बंध स्थान यानी कौन सा? ये ज्ञानावरणी के पांच प्रकृतियों का यह बंध स्थान, मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है। यानी इतने उसके बंध स्थान है। अभी संयत में हम कहाँ तक लेंगे? 13वें तक तो हमने बंधकों को लिया था, यहाँ कितने तक लेना? 10वें तक लेना। ज्ञानावरणी का बंध 10वें तक, वह पांच संख्या से उपलक्षित भावों का आधारभूत बंध स्थान। क्या कहते हैं? पांच संख्या किसकी? ज्ञानावरण की। वो पांचों ही संख्या से जो उपलक्षित है, ऐसा कोई भाव है ना कि ज्ञानावरण का बंध हो रहा है, तो ऐसे कोई जीव के भाव है कि पांचों ही ज्ञानावरण बंद रहे हैं, तो उस भावों का आधारभूत बंध स्थान इन सूत्रोक्त गुण स्थान वाले बंधक जीवों के होता है, अन्य के नहीं। अन्य कौन रह गए? अभी ये दसवें को छोड़कर जो अन्य है उनके यह भाव नहीं होता है ज्ञानावरणी के बंध वाला, क्योंकि इनसे पृथकभूत गुण स्थानों का अभाव है। यहाँ संयत ऐसा कहने पर सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत गुण स्थान तक के बंधक जीवों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ बात अकेले बंध की नहीं है, ज्ञानावरणी के बंध की चल रही है, तो वो दसवें तक ही लेना संयत का अर्थ, क्योंकि इसके ऊपर के गुणस्थान वाले जीवों के ज्ञानावरणीय कर्म का बंध नहीं होता। अब ये ज्ञानावरण की बात उन्होंने बता दी। अब दर्शनावरण की बात, क्रम से हम एक एक प्रकृति की बात करेंगे। दंशनावरणीय कम्मस तिन्नी ठाणानी, वो तिन्नी के बाद कॉमा नहीं चाहिए। कि दंशनावरणीय से कम्मस तिन्नी ठाणानी, उसके तीन स्थान है, हमने देखे थे ना, एक 9 के बंध वाला स्थान, एक 6 के बंध वाला स्थान और एक 4 का बंध वाला स्थान। नवन्नम छन्नम चदुन्नम ठाणम इदि। दर्शनावरणीय कर्म के तीन बंध स्थान है, नौ प्रकृति संबंधी, छह प्रकृति संबंधी और चार प्रकृति संबंधी बंध स्थान। ये बिल्कुल आसान है ये विषय, ख्याल है ना? यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है, वो सू रह गया वहां पर, अकेला त्र आ गया वहां। डालना उसमें सु शब्द। तो यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है क्योंकि वह अपने अंतर्गत सर्व विशेषों का आधारभूत है। देखो, संग्रह नय और व्यवहार नय, ऐसे हमने दो नय पहले देखे थे इसी पुस्तक में। संग्रह ने कलेक्शन, यानी सबको इकट्ठा करके जो नए जो कथन करेगा उसको संग्रह नय कहेंगे। तो उसमें समानता के आधार से उसका संग्रह करते हैं और उन्हीं में कुछ जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, तो उसको हम व्यवहार नय कहेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? संग्रह नय में हमने समूह कर दिया है, सबको इकट्ठा कर दिया है, परंतु उसमें उनकी विशेषता है कि खलास हो गई है, परंतु हमने समानता के आधार पर संग्रह कर दिया है। तो यहाँ क्या लिखे थे, लिखते हैं यह संग्रह नयाश्रित सूत्र है। कौन सा? ये जो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि वह अपने अंतर्गत सर्व विशेषों का आधारभूत है, उसमें सभी विशेषताएं भी उसमें है, इसका अर्थ कहते हैं। दर्शनावरणी कर्म की नौ प्रकृति संबंधी एक स्थान है, स्त्यान वृद्धि आदि तीन प्रकृतियों को छोड़कर शेष छह प्रकृति संबंधी दूसरा स्थान है। पहले गिनाया था ना, शेष यानी कौन से? निद्रा, प्रचला, ये तो दो हो गई निद्रा, और फिर चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। इस तरह से ये छह प्रकृतियों का दूसरा स्थान है और चक्षु दर्शनावरण आदि चार प्रकृति संबंधी तीसरा स्थान है। हमने देखा था कि पहले और दूसरे गुण स्थान में नौ का बंध होता है, तीसरे से लेकर आठवें तक छः का होगा और फिर आगे दसवें तक चार का होगा। शंका, प्रकृतियों की अपेक्षा भेद का अभाव होने से स्थान का भेद करना युक्तिसंगत नहीं है। क्या कहते हैं? सभी प्रकृतियां तो दर्शनावरण की है, प्रकृतियों की अपेक्षा नहीं भेद है, तो फिर ऐसे स्थान के नौ वाला और छह वाला और चार वाला ऐसा स्थान के भेद क्यों करते हो? उसका समाधान नहीं, क्योंकि नौ, छह और चार संख्या से विशिष्ट प्रकृतियों के समूह के एकता का विरोध है। कहीं नौ संख्या है, कहीं छह है और कहीं चार है, तो उसमें तो डिफरेंस है ही, वो समान तो नहीं है ना, उसमें कोई ना कोई तो डिफरेंस है ही। दूसरी बात यह है कि भिन्न गुणस्थानों के आधार से ये स्थान है। भिन्न गुण स्थानों के, यानी पहले दो में नौ का बंध है, आगे में फिर छः का है और फिर बाद में चार का है, इसलिए इनमें अनेकता या विभिन्नता है, अतएव स्थान का भेद युक्ति संगत है। ऐसे ये तीन स्थान अलग अलग होते हैं दर्शनावरण के बंध के स्थान। अब पर्यायार्थिक नए वाले जीवों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। पर्यायार्थिक नय ने अभी उसकी एक एक के नाम बताएंगे सबके, खाली अभी पहले क्या बताया, नौ, छः और चार, तो इतना समझाने से तो कोई नहीं समझेगा, तो नौ कौन सी है, छः कौन सी है, चार कौन सी है, उसकी बात करेंगे। अब आठ नंबर का सूत्र पढ़ते हैं ऊपर। तथ्य इमम नवन्नम ठाणम, ये नौ नौ वाला स्थान कौन सा है वो बता रहे। निद्दा निद्दा, पहला पहला, थीण गिद्धि, निद्दाय, पहलाय, चक्षु दंशनावरणीयम, अचक्षु दंशनावरणीयम, ओहि दंशनावरणीयम, केवल दंशनावरणीयम छेदी। दर्शनावरणीय कर्म के उक्त तीन बंध स्थानों में, अब ये नौ वाला पहले बता रहे, उसकी उनकी प्रकृतियां गिना रहे, बता रहे, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानुवृद्धि, निद्रा और प्रचला, तथा चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, यह नौ प्रकृतिक प्रथम बंध स्थान है। अब यहाँ बताया नहीं है, परंतु वो पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है और ये प्रकृतियां हर समय नौ 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 बनती रहती है, पहले दो गुणस्थानों। शंका, दर्शनावरणी कर्म की उत्तर प्रकृतियों का नाम निर्देश और संख्या। नाम निर्देश यानी नाम का कथन, निर्देश यानी बताना, तो उनके नाम भी बताए थे और संख्या भी बताई। प्रकृति समुत्कीर्तना नाम की प्रथम चुलिका में यह सब निरूपण किया जा चुका है। फिर यहाँ उसे किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये फिर से दोबारा उन्होंने जैसे ज्ञानावरण की गनाई है वैसे दर्शनावरण की भी बता दी है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मंदबुद्धि शिष्यों को संभालने के लिए वह सब यहाँ पर पुनः निरूपण किया जा रहा है। अभी अभी बता दिया ना उन्होंने, कोई तो भूल जाते हैं इसलिए फिर दोबारा बताते हैं। अथवा ये निद्रा निद्रा आदि संज्ञाएं प्रकृतियों की नहीं है, किंतु प्रकृतिबंध के कारणभूत स्थान की शक्तियों की संज्ञाएं है, इसलिए उनके पुनः कथन करने पर भी कोई पुनरुक्त दोष नहीं आता। यानी यहाँ ये केवल प्रकृतियों के ही नाम नहीं है, परंतु ये स्थान है ना, नौ प्रकृतियों का स्थान है, तो वो स्थान की अपेक्षा से भी उसके वही नाम हो गए। ये निद्रा वाला स्थान है या ये कौन सा वाला है, तो नौ के स्थान है ये। अब नौ नंबर का सूत्र, एदास्यम नवन्नम पयड़ीयम पयड़ीनम एकम्मी चेवठाणम बंध मानस। इन नौ प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है। नौ के नौ बंधन वाला जो एक भाव है, तो वह पहले और दूसरे में कहेंगे बाद में, तो उसका एक स्थान है। इन पूर्व सूत्रोक्त नौ प्रकृतियों का एक ही भाव में स्थान या अवस्थान होता है, अथवा बंध करने वाले जीव के इन नवो प्रकृतियों के बंध का एक ही स्थान या भाव है। शंका, वह एक भाव कौन सा है, यानी कौन से भाव है कि जिसके कारण ये नौ प्रकृतियों का बंध होता है, तो उसका समाधान, वह एक भाव दर्शनावरणीय कर्म की नवो प्रकृतियों के बंध का कारणभूत सम्यक्त्व का अभाव है। यहाँ पर सम्यक्त्व का अभाव है और इसके कारण ये नौ के नौ प्रकृतियों का बंध हो रहा है, इस तरह से यहाँ बता दो। यानी ये भाव पहले और दूसरे गुणस्थान में पाया जाता है, क्योंकि तीसरे से फिर वो अलग बात बताएंगे। वैसे सम्यक्त्व का अभाव तीसरे भी है, तीसरे में भी ऐसा हम कहेंगे ना, परंतु यहाँ पहले और दूसरे वाला जो कोई एक भाव है, उस अपेक्षा यहाँ नौ का बंध स्थान बताया। तम मिच्छा दिठिस्स वा शासन सम्मा दिठिस्स वा, ये क्लियर कर दिया। सम्यक्त अभाव वाला जो भाव है वह इन दो गुणस्थानों में है। वह नौ प्रकृति रूप प्रथम बंध स्थान मिथ्या दृष्टि के और सासाधन समय दृष्टि के होता है। नौ प्रकृतियों से निष्पन्न होने वाले एक यानी प्रथम बंध स्थान के मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि, ये दोनों स्वामी होते हैं। ये दो स्वामी है ने, दोनों ही गुणस्थान वाले जीव नौ के नौ प्रकृतियों का बंध करते हैं, तो उनको कहते हैं ये बंध के स्वामी हैं, यानी बंध करने वाले हैं। कहीं उनको बंधक कहा है। शंका, यहाँ स्वामित्व किस लिए कहा जा रहा है? नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव की अपेक्षा एकत्व को प्राप्त स्थान में उत्पन्न होने वाली एक स्वामी स्वरूप एकांत बुद्धि को दूर करके उसके स्वामी अनेक है, इस प्रकार की अनेकत्व स्वरूप बुद्धि को उत्पन्न कराने के लिए यहाँ स्वामित्व का कथन किया जा रहा है। क्या कहते हैं, जब हम कहेंगे सम्यक्त्व का अभाव है, तो सम्यक्त्व का अभाव है ऐसा कहने पर सभी जीवों को एक ही मान ले कोई, तो ऐसा नहीं, उसमें भी दो गुणस्थान अलग अलग है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी और सासाधन भी है, इसलिए स्वामी कहकर उनमें जो अनेकता है वो भी उन्होंने क्लियर कर दी। यानी पहले गुणस्थान वाले भी नव प्रकृति का बंध करते हैं और दूसरे वाले भी करते हैं, उनमें गुणस्थान की अपेक्षा डिफरेंस है परंतु नव के बंद करने की अपेक्षा समानता है। समानता की अपेक्षा एक स्थान कह दिया, फिर भी उनमें भिन्नता बताने के लिए मिथ्या दृष्टि और सासाधन ये दो स्वामी हैं ऐसा बता दिया। अब अगला सूत्र, तथ इमं छन्नम ठाणम, अभी छह वाले स्थान बता रहे। निद्दा निद्दा पहला पहला थीन गिद्धियो वज्र निद्दाय पहलाय चक्षुदंशनावरणीय अचक्षुदंशनावरणीयम ओहि दंशनावरणीयम केवल दंशनावरणीयम छेदी, यानी ये तीन को छोड़कर बाकी छह। दर्शनावरणीय कर्म के उक्त तीन बंद स्थानों में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि को छोड़कर निद्रा और प्रचला तथा चक्षु दर्शनावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय यह छह प्रकृतिक दूसरा बंद स्थान है। दूसरा, वो दूसरा मराठी हुआ, दूसरा दो दीर्घ चाहिए, दूसरा बंद स्थान है। शंका, ये समझ में आता है? छह प्रकृतियों का भी दूसरा बंद स्थान बता रहे। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि, इन तीन को छोड़कर शेष छह प्रकृतियों का दूसरा स्थान होता है ऐसा सूत्र कहने पर शेष प्रकृतियां ये होती है यह जाना जाता है। अतएव उन प्रकृतियों का नाम निर्देश करना अनर्थक है। पहले तो नौ के नौ प्रकृतियां बता दी थी, अभी तीन छोड़कर रिमेनिंग छह कहने से वो तो जानी जाती है, तो फिर दोबारा सूत्र क्यों कहा ऐसा प्रश्न है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि अति जड़ बुद्धि शिष्यों को संभालने के लिए, ये तो अति जड़ बुद्धि क्यों, अभी अभी ऊपर सूत्र हुआ ना, फिर भी वो बार बार बताने से अपना भी याद हो जाता है, होता है ना, एक बार बता दिया और चलो ये तीन को छोड़कर बाकी छह इतना ही कहना अलग बात है, और फिर दोबारा वो छह गिनाना, वो तो बार बार गिनाने से हमको याद हो जाते हैं। तो उनको संभालने के लिए सूत्र में उन प्रकृतियों का नाम निर्देश किया गया है। अब 12वें नंबर का सूत्र, एदासिम छन्नम पयड़ीनम एकम्मि चेवट ठाणम बंदमानस, यानी ये छह प्रकृतियों का एक बंद स्थान है। अब वो कहेंगे कहां से कहां तक? शंका, यहां पर छह प्रकृतियों वाले स्थान के एकत्व कैसे संभव है, यानी उनमें एकत्व किस तरह से होता है, क्योंकि तीसरा गुण स्थान भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, वो ऊपर आठवें तक गिनाएंगे। तो कहते उसका उत्तर, छह प्रकृतियों के बंध योग्य भाव की अपेक्षा कोई भेद न होने से, क्या कहते हैं, यहां एकता कौन सी है, समानता कि छह प्रकृतियों का बंध, निद्रा प्रचला और ये जो चार है इन छह का बंध जो है उसका बंध होने की अपेक्षा से वो एकत्व है उनका, ख्याल है? तो उनकी अपेक्षा कोई भेद न होने से छह प्रकृतियों वाले स्थान के एकत्व बन जाता है। गुणस्थान है अलग अलग, फिर भी एकत्व किस अपेक्षा से है, दर्शनावरण की छह प्रकृतियों का बंध होने की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा एकत्व है। बंधमान के ऐसा कहने पर बंध करने वाले जीव का अथवा बंधने वाले कर्म का ग्रहण करना चाहिए। बंधमानस कहा ना उन्होंने सूत्र में, यानी वहां बंधने वाली प्रकृतियां बांधने वाला जीव, ऐसे दोनों तरह से वहां उसका अर्थ कर सकते हैं। अब 13 नंबर का सूत्र, तम यानी वो स्थान, अभी कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक है उसकी बात चले। तम सम्माम इच्छा दिठिस वा असंजद सम्मा दिठिस वा संजदा संजदस वा संजदस वा, अभी संयत कहने से वो तो आठवें तक बताएंगे। वह छह प्रकृति रूप द्वितीय बंद स्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि संयता संयत और संयत के होता है, वो और करना बराबर और दिख रहा है। सूत्र में संयत के ऐसा पद कहने पर अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम सप्तम भाग में, प्रथम सप्तम भाग यानी फर्स्ट सेवंथ पार्ट से, सात भाग करने से उसमें से पहला भाग, परंतु वो सात भागों में से एक है इसलिए कहने के लिए प्रथम सप्तम कह दिया। सातवां भाग नहीं, पहला ही है परंतु वन सेवंथ है पार्ट, इसलिए उसको प्रथम भाग कहा। सात में से एक है बताने के लिए। प्रथम सप्तम भाग में अर्थात अपूर्वकरण के सात भागों में से प्रथम भाग में स्थित संयतों का ग्रहण करना चाहिए। ये बंद की विच्छित्ति जब हम पढ़ेंगे या जो हम पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने देखा था कि आठवें गुणस्थान के पहले भाग में निद्रा और प्रचला के बंद की विच्छित्ति होती है, यानी पहले भाग में बंद है, आगे उसका बंद नहीं है। तो यहाँ वही देखा कि आठवें के पहले भाग तक गिनाया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां गुणस्थान और आठवें का पहला भाग, इन सब में दर्शनावरण की छह प्रकृतियों का बंध होता है। उस अपेक्षा से ये सभी में एकत्व बताया है, सबका मिलकर एक स्थान हो गया। कौन सा स्थान? दर्शनावरण के छह प्रकृतियों का बंध स्थान। देखो सात भाग में प्रथम भाग में से संयतों का ग्रहण करना चाहिए। अब शंका, इन पूर्वोक्त छह प्रकृतियों के बंध के यदि सूत्रोक्त ये सब सम्यक मिथ्या दृष्टि आदि स्वामी होते हैं, क्या कहते हैं? ये जो सूत्र में बताया ना कि ये बंध के स्वामी कौन कौन है सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर वो आठवें के पहले भाग तक, तो फिर कैसे उन सबका एक भाव में अवस्थान हो सकता है? तो उन सबका एक भाव कैसे हो सकता है जो तीसरे गुणस्थान का कहाँ और वो छठे सातवें का कहाँ है? इस तरह से प्रश्न हो रहा है, क्योंकि बहुतों के एकत्व का विरोध है, उनमें एकत्व कैसे हो सकता है? इस तरह से शंका पूछने पर आचार्य उसका समाधान करते हैं, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि छह प्रकृतियों का बंद करने वाले इन बहुत से स्वामियों के भी, ये है तो बहुत से स्वामी, कौन से? कोई तीसरे गुणस्थान वाला है, कोई चौथा, कोई पांचवा, कोई छठा सातवां और कोई आठवें का पहला भाग। इस तरह से विविधता होने पर भी समानता कौन सी है? छह का बंध करने की अपेक्षा स्वामियों के भी छह प्रकृतियों के बंध परिणाम की अपेक्षा समानता होने से, ये है विविधता, फिर भी ये छह प्रकृतियों का बंध करते, कौन सी छह? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? दर्शनावरण की छह प्रकृतियों का बंध करने की अपेक्षा उनमें एकत्व भी पाया जाता है। देखो ज्ञानावरण की अपेक्षा हमने देखा था पहले से दसवें गुणस्थानों को एकत्व कर दिया, अभी दर्शनावरण की अपेक्षा से पहले दो गुणस्थानों के अलग कर दिया, फिर छह प्रकृतियों का बंध तीसरे से आठवें के पहले भाग तक, और फिर चार प्रकृतियों का बंध आठवें के दूसरा भाग से लेकर दसवें तक, तो उसकी अपेक्षा समानता होने से एकत्व होने में कोई विरोध नहीं है। अब चौदवां नंबर का सूत्र, तथ्य इमं चतुर्णम ठानम। अभी चार का स्थान बता रहे हैं। निद्राय पहलाय वज्ज, यानी निद्रा और पजला को छोड़कर चक्षुदंशनावरणीयम, अचक्षुदंशनावरणीयम, ओधिदंशनावरणीयम, केवल दंशनावरणीयम चेदि। दर्शनावरणीय कर्म के उक्त तीन बंध स्थानों में निद्रा और प्रचला को छोड़कर चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, यह चार प्रकृतिक तीसरा बंध स्थान है। चार प्रकृतिक यानी चार प्रकृतियों वाला ये तीसरा बंध स्थान है। तीन बंध स्थान देखे ना, कौन कौन से? मंजू बहन कहेंगे आप? हाँ नहीं, कितने प्रकृतियों का? हाँ, नौ प्रकृतियों का एक बंध स्थान, हाँ छह प्रकृतियों का एक दूसरा बंध स्थान, और तीसरा बंध स्थान चार प्रकृतियों का, ये तीसरा बंध स्थान है। यह सूत्र निष्फल नहीं है, क्योंकि छोड़ी जाने वाली प्रकृतियों की प्ररूपणा के बिना विवक्षित चार प्रकृतियों को जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है, निष्फल नहीं है, निरर्थक नहीं है, ऐसा पहले कह दिया। इनको छोड़कर रिमेनिंग चार, ऐसा कहना है ना, तो जो नहीं है उसको भी बता रहे हैं और जिनका बंद है उसको भी बता रहे हैं। जैसे पहले पूर्व सूत्र में पहले नौ प्रकृतियां बताए, फिर जब छह का नंबर आया, छह स्थान बताने का, यानी छह प्रकृतियों का, तब वहां कहा था कि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि को छोड़कर अन्य छह। अब यहाँ चार का जब बताने का क्रम आ गया, तब निद्रा और प्रचला को छोड़कर जो रिमेनिंग चार है उसकी बात की, तो कहते कि ये निष्फल नहीं है, निरर्थक नहीं है, क्योंकि कौन सी को छोड़ा, पहले तो छह थे तो उसमें से छोड़े कौन से, ये बात उसके एम्फोसाइज करने के लिए, बताने के लिए उसको छोड़कर ये बाकी चार का बंद यहाँ है ये बात बता रहे। देखो फिर पढ़ती हूँ, यह सूत्र निष्फल नहीं है क्योंकि छोड़ी जाने वाली प्रकृतियों की प्ररूपणा के बिना विवक्षित चार प्रकृतियों को जानने का अन्य कोई उपाय नहीं है। कौन सी दो छोड़ी वो भी जानना जरूरी है ना, इसलिए उनको पहले बता दिया। व्यतिरेक द्वारा विधीयमान प्रकृतियों के ज्ञात हो जाने से पुनः सूत्र में प्रकृतियों का नाम निर्देश करना निष्फल है, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, शंकाकार शंका पूछेगा इसलिए पहले आचार्य बता देते हैं क्या, कि व्यतिरेक द्वारा यानी इनको छोड़कर, छोड़कर जो रिमेनिंग जो है वो तो जाने जा सकते हैं, ऐसा कोई कहेगा तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे पहले छह का स्थान बता दिया, अब यहाँ कहेगा निद्रा और प्रचला छोड़कर बाकी, हम तो आलस के कारण बाकी रिमेनिंग चार कह देंगे। तो आचार्य कहते हैं उतना भी नहीं, वो फिर दोबारा गिनाएंगे, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नए वाले शिष्यों के अनुग्रहार्थ उस निर्दिष्ट प्रकृति निर्देश के निष्फलता का विरोध है। यानी ये प्रकृतियों का कथन करना कोई निष्फल नहीं है, निष्फलता का विरोध है, यानी वो निष्फल नहीं है। अब अगला सूत्र बताते हैं 15 नंबर का, एदासिम चदुन्नम पयडीनम एकम्मी चेवट ठाणम बंदमानस। चार प्रकृतियों का एक स्थान है, अब एक स्थान कौन कौन सा होगा, आठवें के दूसरे भाग से लेकर नौवां दसवां, हाँ ये सब मिलकर एक स्थान होगा उसका। देखो नीचे उसका अर्थ किया है 15वें सूत्र का, इन चार प्रकृतियों के बंद करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, यह उसका भाव, कौन सा भाव, चार प्रकृतियों का बंद करने वाला जो कोई परिणाम है उस भाव की अपेक्षा एक ही, वो एक स्थान है उसका, इसलिए उसको एक गिनाया है। गुणस्थान अलग अलग है, उनके अन्य भाव अलग हो गए, परंतु यहाँ कौन से भाव की अपेक्षा, हाँ चार प्रकृतियों का बंद करने की अपेक्षा समानता है, ये उसका भाव। यहाँ पर इस प्रकार अर्थ का संबंध करना चाहिए कि इन चार प्रकृतियों को बांधने वाले जीव का एक ही स्थान होता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के अर्थ में प्राकृत भाषा में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों की प्रवृत्ति का होना संभव है, ऊपर लिखा ना बंद मानस षष्ठी विभक्ति लगाई, स्य होता है संस्कृत में और स होता है प्राकृत में, षष्ठी लगाई है परंतु वो प्रथमा विभक्ति में जानना चाहिए, शेष सूत्रार्थ सुगम है। हाँ दर्शनावरण के बंद की अपेक्षा जो कोई परिणाम है, जिस परिणाम के कारण चार प्रकृतियों के, ये दर्शनावरण की चार प्रकृतियों का बंद हो रहा है, वह परिणाम सर्वत्र समान है। गुणस्थान की अपेक्षा अलग है, गुणस्थान की अपेक्षा वो मोहनीय के भाव अलग अलग है।
नहीं नहीं देखिए, यहाँ आप जो कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम 10 प्रकार के परिणाम करने से ये चार ही प्रकृतियां बनती हैं, अभी अलग अलग गुणस्थान के अलग अलग परिणाम होंगे, लेकिन वो कौन से परिणाम है उसकी अपेक्षा नहीं देख रहे, जिन परिणामों से सिर्फ चार का बंध होता है इन सभी परिणामों को एक परिणाम बताया, मतलब और उसका स्थान एक है, कौन सा, चार प्रकृतियां बांधने का, तो कौन से परिणाम है उसकी बात नहीं हो रही है।
देखो गुणस्थान जो है वो मोहनीय के आधार से अलग अलग है। मोहनीय कर्म, कर्म की बात लो या जीव के परिणामों की बात लो, तो मोहनीय की अपेक्षा ही गुणस्थान अलग अलग है। परंतु यदि यदि हम दर्शनावरण, वो तो मोहनीय को छोड़ो, दर्शनावरण की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे, चार ही गुण, उसको गुणस्थान कहते ही नहीं ना हम, वो जो कोई भाव है वो समान है, इतना ही लेना, उन भावों को हम गुणस्थान नहीं कहेंगे। गुणस्थान की परिभाषा याद करना फिर क्या था, हाँ, मोह और योग के निमित्त से, हाँ, जीव के तारतम्यता रूप अवस्था को, कौन से गुणों की, श्रद्धा और चारित्र की। अब ना यहाँ श्रद्धा की बात है ना चारित्र की, ये जो भाव है वो दर्शनावरणी के बंध के कारणभूत भाव, ख्याल है ना, हाँ, उसको लेना यहाँ। बहुत से भाव है, अभी इतने गुण है उसके, वो गुणस्थान की अपेक्षा से है, वो श्रद्धा चारित्र की अपेक्षा से, उसमें मोहनीय का वो निमित्त बनेगा। हाँ, बंद की अपेक्षा से, अब उदय की अपेक्षा से और अलग हो जाएगा। हाँ, दर्शनावरण के हमने देखा ना, ज्ञानावरण के पहले से लेकर दसवें तक ज्ञानावरणी का बंद है, वो भाव समान है। पांचों का बंध होता है कि नहीं, इतना ही देखना है वहां पर। अभी उसमें भी अनुभाग अलग अलग बंधेगा, स्थिति अलग अलग बंधेगी, उसकी बात यहाँ नहीं कह रहे। बंद हो रहा है, इतनी बहुत स्थूल अपेक्षा है यहाँ पर। देखो 16 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, तम संजदस्य, वह चार प्रकृति रूप तृतीय बंध स्थान संयत के होता है। चार ही प्रकृतियों का बंध संयतों के होगा, वो कौन से संयत अभी बोलेंगे हम, आठवें के दूसरे भाग से लेकर। हाँ, क्योंकि अपूर्वकरण के सात भागों में से द्वितीय भाग से आदि लेकर, यानी वहां से शुरू होकर सूक्ष्म सांप्रायिक, वो थ हो गया, सांप्रायिक करना, सांप्रार्थिक हुआ है, सांप्रायिक शुद्धि संयत तक महाऋषियों में इन चार प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। शंका, संयत के इस एक वचन के द्वारा अपूर्व करणादि बहुत से संयतों का निर्देश कैसे घटित होता है। वहां कह दिया संयत आपने कह दिया, और यहाँ आठवां भी लिया, नौवां भी लिया, दसवां भी लिया, तो अनेक संयत उसमें कैसे आ सकते हैं, उसका समाधान नहीं, क्योंकि बहुत से भी उन संयतों का संयतत्व की अपेक्षा एकत्व मानने में कोई विरोध नहीं है। गुणस्थान की अपेक्षा आठवां नौवां दसवां अलग हो गए, फिर संयतपना तो सब में है, संयतपना की अपेक्षा उनमें एकत्व है, इसलिए उनके लिए संयत यह शब्द उन्होंने ले लिया। दूसरी बात यह है कि एकत्व और अनेकत्व परस्पर में पृथकभूत नहीं है। क्या कहते हैं, जहाँ एकत्व है वहीं पर अनेकत्व है, जहाँ पर समानता की अपेक्षा एक ग्रुप बनाया है उन्हीं में उनकी विशेषताओं की अपेक्षा देखने पर उसमें विभाजन भी हो सकता है, अनेकत्व भी उनमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम मनुष्य की अपेक्षा सभी हम एक ऐसा कहेंगे, फिर भी कोई अमेरिकन है, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, उसमें वो विभक्त है। तो एकत्व और अनेकत्व परस्पर में पृथकभूत नहीं है, यानी वो जुदे जुदा नहीं है, एक ही जगह में एकत्व भी पाया जाएगा और अनेकत्व भी। अर्थात वस्तुओं में संग्रहण से अभेद विवक्षा होने पर एकत्व, पहले मैंने बात की थी ना संग्रहण, संग्रह ने क्या कहता है, अनेक वस्तुओं को एक इकट्ठा समूह रूप से देखता है, संग्रह करता है उनका, किसके बलबूते पर, समानता के आधार से, और उन्हीं एक इकट्ठे किए हुए पदार्थों में उनकी जो भेद है, उनके जो भेद है, भिन्नता है, उसके आधार पर हम उसको पृथक पृथक करेंगे तो वो व्यवहार नय हो जाएगा। तो यह क्या कहते हैं, वस्तुओं में संग्रह नय से, यानी संग्रह नय की अपेक्षा से अभेद विवक्षा होने पर एकत्व, अभेद की विवक्षा है ना वहाँ, जैसे हम कहेंगे ये द्रव्य है तो छह द्रव्यों में अभेद विवक्षा हमने ले ली, द्रव्य कह दिया, और उसमें ये जीव है, ये पुद्गल है, धर्म है, अधर्म, ये तो उसमें भेद कर दिया, तो उसको हम व्यवहार ने का विषय कहेंगे। तो अभेद विवक्षा होने पर एकत्व और व्यवहार ने से भेद विवक्षा होने पर अनेकत्व का कथन किया जाता है, उसको व्यवहार नये कहते हैं। एक ही समानता को देखकर इकट्ठा करना उसको संग्रह नये कहेंगे, और कोई भेद की विवक्षा करके उसकी अपेक्षा से भेद करके कथन करने को व्यवहार नहीं कहेंगे। सभी जीव कहने से तो वो तो एकत्व हो गया, संग्रह नहीं हो गया, ये संसारी है ये मुक्त है ऐसा कहने पर वो व्यवहार नहीं हो गया। अभी संसारी में भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, ये तो व्यवहार नहीं, और आगे आगे जितने भेद करेंगे उतने उतने वो व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं होगा। सबसे पहले जिसको शुद्ध संग्रह नहीं कहते हैं वो सत कहने से उसमें द्रव्य गुण है पर्याय ये भी नहीं करना, सत बस है, फिर उसमें ये द्रव्य है कहेंगे, फिर द्रव्य में ये छह द्रव्य कहेंगे, जितने उतने भेद बनेंगे। यानी द्रव्य कहने से या जीव कहने से वो संग्रह नहीं होगा कि व्यवहार नहीं होगा। हमने कह दिया ये जीव है, हाँ आप क्या कहते हैं? देखो द्रव्य में से जीव को अलग करेंगे तो वो व्यवहार नहीं होगा, बराबर। और ये संसारी मुक्त इसका भेद किए बिना सभी जीवों को इकट्ठा करने की अपेक्षा वो संग्रह नहीं होगा। इसीलिए कहते जहां पर एकत्व है वहां पर अनेकत्व भी है। हम किस विवक्षा से उसको देख रहे हैं इस पर उसको संग्रह नहीं कहना कि व्यवहार नहीं कहना ये निर्भर है। ख्याल है? हाँ। अब ये तो घाती कर्म की बात हुई, अब वेदनीय की बात यहाँ आ जाएगी। वेदनीय से कम्मस दुवे पयडियो सादा वेदनीयम चेव असादा वेदनीयम चेव। ये तो आसान है, देखो वेदनीय कर्म की दो ही प्रकृतियां हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। विस्मरणशील शिष्यों को स्मरण कराने के लिए अथवा बंधने वाली प्रकृति मात्र के अंतरंग कारण को बतलाने के लिए यह सूत्र रचा गया है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। क्या कहते हैं? एक तो हमें फिर याद दिलाने के लिए दो बातें बता दी, कौन सी? वेदनीय की दो प्रकृतियां होती है, एक साता वेदनीय एक असाता वेदनीय, एक तो हमने हमको स्मरण कराया, और दूसरी बात क्या है कि प्रकृति बनती है तो वहां पर कोई कारण भी है, तो वो जो कारण है वहां वो बताने के लिए दो अलग अलग प्रकृति बनती है तो वहां दो अलग अलग कारण होने चाहिए, क्योंकि किसी को साता वेदनी बनते हैं, किसी को असाता वेदनी बनता है, तो इसलिए वो बताने के लिए यहाँ ये फिर दोबारा बता दिया है। शेष सूत्रार्थ सुगम है। अब अगला सूत्र 18 नंबर का, एदासिम दोन्नम पयडीनम एकम्मि चेव ठाणम बंधमानस। क्या कहते हैं? इन दोनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में, वो भव में हुआ है, भव भेल झाला है, भाव में चाहिए, भेव हुआ है उसको में करना, एक ही भाव में अवस्थान होता है। अब तक हमने भाव की बात की नहीं, देखो पहले भी बहुत से सूत्रों में भाव शब्द आया था, नहीं ऊपर भी होगा, एकम्मि चेव ठाणम बंधमानस, पहले भी जहां जहां बंधमान की बात है वहां अवस्थान की बात आई थी। 15 नंबर का सूत्र देखो, वो 15 के सूत्र का अर्थ देखना, नीचे मिला 86 पेज पर, इन चार प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान है, वैसे यहाँ भी लेना है वेदनीय के बारे में। इन दोनों प्रकृतियों के बंध करने वाले जीव का एक ही भाव में अवस्थान होता है, बराबर। शंका, साता वेदनीय और असाता वेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, किसी के इन जनरल कहेंगे हम वेदनीय का बंद होता है, इतना ही कहेंगे। किसी के साता एट अ टाइम एक का ही बंद होगा, या साता वेदनीय का होगा या असाता का होगा, एक साथ दोनों का बंद नहीं होता है। प्रतिपक्षी होते ये, साता वेदनीय का होगा उतने काल तक, असाता का नहीं, असाता का चालू है तो साता का नहीं, इस तरह से। ये तो शंका करके, वो तो आगम की बात बता रहे हैं और फिर बाद में शंका पूछने वाला है। तो शंकाकार कहता है कि एक साथ दोनों का बंध तो नहीं होता है, क्योंकि उन दोनों प्रकृतियों के बंध के कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामों की एक साथ प्रवृत्ति का अभाव है। यानी बंध का कारणभूत विशुद्धि, यानी साता वेदनीय के बंध के कारणभूत क्या है, विशुद्धि है। यानी विशुद्धि के कारण साता वेदनीय बनता है, और असाता वेदनीय क्यों बनता है, तो संक्लेश के कारण असाता वेदनीय बनता है, तो उसको कहते हैं बंध के कारणभूत परिणाम। तो दोनों प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणाम अलग अलग है, बराबर, और वे दोनों परिणाम एक साथ नहीं होते। जब विशुद्धि है तब संक्लेश नहीं, जब संक्लेश है तब विशुद्धि नहीं, दोनों की एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है। अब ये शंकाकार के स्टेटमेंट चल रहे हैं। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों का एक स्थान है यह बात घटित नहीं होती है। सूत्र में तो बताया एक ही स्थान है, किंतु दोनों प्रकृतियों के दो स्थान कहना चाहिए, ये तो शंकाकार की शंका है। समाधान, यदि बंध के कारणभूत विशुद्धि और संक्लेश परिणामों के दो भेदों के कारण वेदनीय कर्म की मूल प्रकृति के साता वेदनीय और असाता वेदनीय ये दो स्थान होते हो तो भले ही होवे। क्या कहते हैं, विशुद्धि और संक्लेश के कारण ये जो साता असाता दो प्रकार के भेद है मूल प्रकृति में, वो होवे तो होवे, उसमें तो कोई ना नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भेद प्रकृतियों के भेद है। क्योंकि दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है, तथा मूल प्रकृति से व्यतिरिक्त वेदनीय कर्म अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है। अरे कहाँ गया, फिर पढ़ती हूँ। क्योंकि दोनों प्रकृतियों का एक साथ बंध नहीं होता है, तथा मूल प्रकृति से व्यतिरिक्त वेदनीय कर्म अन्य उत्तर प्रकृतियों का अभाव है, किंतु ग्रंथकार ने इस भेद की विवक्षा नहीं की है। फिर शंका, तो फिर ग्रंथकार का अभिप्राय क्या है, उसका समाधान करते हैं। कहते हैं साता वेदनीय और असाता वेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है, ऐसा कहने पर एक संख्या अवस्थित होने से एक ही भाव में अवस्थान है। क्या कहना चाहते हैं, एक वेदनीय कर्म बनता है एट ए टाइम, तो संख्या की विवक्षा है। जैसे दर्शनावरण में हमने 9 का एक स्थान देखा, 6 का एक स्थान देखा और 4 का एक स्थान देखा, वहाँ यहाँ पर वेदनीय में एक का ही स्थान है, प्रकृतियाँ दो परंतु स्थान एक का है, यानी एक प्रकृति एट अ टाइम बनती है। कौन सी बनती है, उसकी विवक्षा नहीं की है, बनती एक है तो एक का ही स्थान है, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो फिर समाधान पढ़ती हूँ। साता वेदनीय और असाता वेदनीय इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही भाव में अवस्थान होता है, ऐसा कहने पर एक संख्या अवस्थित होने से एक ही भाव में अवस्थान है, अर्थात दोनों प्रकृतियों का एक ही बंध स्थान है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि यह अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा तो वेदनीय कर्म के बंध स्थान की एकता का विरोध आएगा, शेष सूत्रार्थ सुगम है। यानी वेदनीय कर्म का एक प्रकृतियों का बंध वाला स्थान पाया जाता है, तो मेरा कहें पूछना है आपसे कहां से कहां तक। हाँ, असाता, परंतु यहाँ एक का स्थान है, संख्या की बात है, एक वेदनीय कर्म बन रहा है, तेरहवे तक है ना, तो छठे तक तो क्या कहेंगे, दोनों में से एक, और छठे के बाद एकमात्र एक में से एक, ख्याल है, छठे तक तो ऑप्शनल है, साता या असाता, और सातवें से तेरहवें तक साता, परंतु एक ही प्रकृति बन रही उसकी अपेक्षा यहाँ स्थान बता रहे, तो एक का स्थान है इतना ही बता देंगे, और कितने स्थान है तो एक ही स्थान है, सबका मिलकर एक स्थान बता देंगे कि एक वेदनीय बन रहा है, बस इतना ही। अब वहां 19 नंबर के सूत्र में बता रहे, तम यानी वो जो एक वाला स्थान है वेदनीय का, मिच्छादिठिसवा शासन सम्मादिठिसवा सम्मा मिच्छादिठिसवा असंजद सम्मादिठिसवा संजदा संजदस्वा संजदस्वा, सब ले लिया उसमें। वह वेदनीय कर्म संबंधी बंध स्थान मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत और संयत के होता है। सूत्र में संयत के ऐसा सामान्य पद कहने पर अभी कहाँ तक लेना, अभी हमने देखा ना, विचार किया था, हाँ, सयोगी भगवंत तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वहां तक साता वेदनी का बंध है, तो हमारे केवल यहाँ संख्या की अपेक्षा स्थान कह रहे हैं, एक का स्थान कह दिया, साता है क्या असाता है उसकी विवक्षा नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ कहीं बनते ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो या मुनि हो, एक दोनों में से एक वेदनीय बन रहा है तो एक का स्थान है ऐसा कहेंगे, उस अपेक्षा से तो उसका सबका मिलकर एक ही स्थान बता दिया, एक प्रकृतियों के बंध वाला स्थान ऐसा ही कहेंगे। संख्या लेना है उसमें, कौन सी प्रकृति बन रही उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। देखो, सयोगी भगवान तक के संयतों का ग्रहण करना चाहिए, आगे के संयतों का नहीं, आगे कौन बच गए, अयोगी, हाँ उनको यहाँ नहीं लेना है, उनके तो बंध ही नहीं है कोई भी, क्योंकि वहां पर अर्थात अयोगी भगवंत के इस स्थान के बंधन का अभाव है, शेष सूत्रार्थ सुगम है। तो अभी तक हमने ज्ञानावरणी के कितने देखे स्थान, एक, दर्शनावरण के तीन, नौ का, छह का और चार का, बराबर, हाँ, फिर किसका देखा, वेदनीय के कितने, एक स्थान, एक एक वाला एक, हाँ। अब मोहनीय की बात करें, मैं पूछूं अंतराय के कितने हो गए, एक, हाँ, एक से दस तक, पांचों के पांचों बनते हैं, ये मोहनीय में ही विविधता पड़ेगी, क्योंकि मोहनीय की अपेक्षा गुणस्थान है, तो हर गुणस्थान के स्थान अलग अलग होंगे। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। गोत्र में कितने हो गए, एक ही, क्योंकि नीच या उच्च यानी एक ही बंद है ना, तो या तो बंद होगा तब तो केक का ही बंद होगा, हाँ। आयु में एक ही बनती है ना। अब मोहनी की बात करेंगे, देखो 88 पेज पर यहाँ 20 नंबर का सूत्र, मोहनीयस कम्मस दस ठाणानी, उसके 10 स्थान है, 22 आए, 22 प्रकृतियों का बंध वाला स्थान, 21 आए, 27 13 नवन्नम पंचन्नम चतुन्नम तिन्नम दोन्नम 21 से ठाणम चेदी, क्या कहते हैं, देखो मोहनीय के 10 बंध स्थान है, 22 प्रकृति कौमा देना वहां, 21 प्रकृति यानी 22 प्रकृतियों वाला एक बंध स्थान है जो पहले गुणस्थान में होता है, फिर दूसरे गुण स्थान में मिथ्या तो प्रकृति नहीं बनती है, तो वो 21 प्रकृति वाला स्थान हो गया। 21 प्रकृतिक, फिर 17 प्रकृतिक, हाँ वो तो तीसरा चौथा हो जाएगा 17 प्रकृति वाला, वो देखेंगे विक्रम से। देखो 21 में क्या हुआ, एक मिथ्यात्व गया, फिर उसमें से अनंतानुबंधी के चार नहीं बनेंगे तीसरे गुण स्थान वाले के, तो उसमें से चार कम हो गए 21 में, तो 17 हो गए। फिर 13 प्रकृतिक, 17 में से फिर चार गए, कौन से चार, अप्रत्याख्यान है, तो 13 हो गए। 13 में से 9 प्रकृतिक, हाँ फिर 5 प्रकृतिक, फिर 4 प्रकृतिक, 3 प्रकृतिक, 2 प्रकृति, 1 प्रकृतिक बंद स्थान है। अब उसको हम क्रम से देखते हैं। यह द्रव्यार्थिक नयाश्रित सूत्र है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयाश्रित क्यों कहा, क्योंकि वहां केवल संख्या बता दी, उनके नाम नहीं बताए, इसलिए द्रव्यार्थिक नय का कह दिया, क्योंकि वह अपने अंतर्निहित समस्त अर्थों के बीज पद स्वरूप है। अंतर्निहित यानी उसमें जो इंक्लूडेड है, उसमें जो गर्भित है, उसमें जो समाविष्ट है, ऐसे अर्थों के बीज पद स्वरूप। बीज पद यानी शॉर्ट में बता दिया, खाली 22 प्रकृति इतना ही कह दिया, ये बीज पद है। कौन सी 22 प्रकृतियां है वो तो विस्तार हो जाएगा, ये तो इन शॉर्ट है। तो इतना ही सूत्र लिखने से उसमें वो पूरा ही डिटेल द्रव्यार्थिक नय वाले शिष्य को समझ में आ जाता है। अभी उसको समझाने के लिए आगे फिर विस्तार से समझाएंगे, 22 वाली कौन सी प्रकृतियां वगैरह बात विस्तार से करेंगे। अब अगले सूत्र में बताते, 89 में, तथ्य इमम 22 आये ठाणम, ये 22 प्रकृतियों का स्थान कौन सा है वो अभी बता रहे। मिच्छत्तम सोलस कषाया, मिच्छत्तम यानी मिथ्यात्व, 16 कषाय, कौन से 16 कषाय, अनंतानुबंधी के चार, क्रोधमान माया लोग, वो प्रत्याख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार और संज्वलन चार। तो मिथ्यात्व गुण स्थानों में ये मिथ्यात्व प्रकृति और ये 16 कषाय नित्य हर समय बनते हैं। फिर इथि वेद पुरुष वेद नहुसक वेद तिन्नम वेदानम एकदरम, क्या कहते हैं, तीन वेदों में से एक का बंद होता है। मोनी की प्रकृति कितनी है, 28, और यहाँ स्थान कितने का बताया, 22 का। उसमें दर्शन मोनी का एक मिथ्यात्व ही बंधेगा, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बंधने वाली प्रकृति नहीं है, वो दो को निकाल दिया, तो रही कितनी, 26 है ना। अभी 26 में से तीन वेद में से एक ही वेद का बंद होगा। अभी जो हास्य रति बंधेगी या शोक रति बंधेगी, उसमें वो ऑप्शनल है। यानी मिथ्यात्व का बंध होगा, 16 कषाय होंगे और भय जुगुप्सा होगी, ये तो नित्य वहां बंद होगा ही होगा। तो एक मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा 19 तो हो गए, 19 तो फिक्स है, नित्य बंधने वाली द्रोहबंदी कहेंगे उसको। और ऑप्शनल कौन से है, तीन वेद में से एक वेद, 20 हो गए, हास्य रति या शोक रति 22 हो गए ना। देखो कौन से, मिथ्यात्व 16 कषाय 17 हुए, भय जुगुप्सा 19 हुए, 19 तो फिक्स है, तीन वेद में से एक वेद यानी 20 हो गए। और युगल है, हास्य रति बंधेगा या शोक रति बंधेगी, तो दोनों में से एक, तो 22 हो गए, दो हो गए ना। तो ये 22 प्रकृतियों का स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को हर समय कौन सी बन रही है, मिथ्यात्व 16 कषाय और भय जुगुप्सा, तीन वेद में से एक वेद, हास्य रति या शोक रति, इस तरह से 22 का स्थान है। उस स्थान में जो भंग अगर कहेंगे, किसी को तीन वेद में से एक वेद बनता है और हास्य रति या शोक रति उसमें से एक बनता है, तो उसमें डिफरेंस होगा, परंतु संख्या 22 होगी तो 22 का स्थान कहेंगे हम उसको। देखो वेदानम एक कदरम, दूसरी लाइन में पढ़ रहे हैं मूल सूत्र में, हस्सरदि अरदि सोग, यानी हास्य रति या और अतिशोक, दोनम जुगलानम एक कदरम और भय दुगुंछा यानी भय और जुगुप्सा, एदास्यम बाबिसाए पयडीनम एकम मिचेवट ठाणम बंदमानस। अब नीचे उसका अर्थ कहते हैं। मोहनीय कर्म के उक्त दश बंद स्थानों में से कौन से, 22 वाला, 21 वाला, 17 वाला, 13 वाला, 9 वाला, 5 वाला, 4, 3, 2, ने कैसा, उनमें से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, ये एक मिथ्यात्व हुआ, अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय में सभी आ गए। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, इन तीन वेदों में से कोई एक वेद कितने हुए? हाँ, 20 कहाँ हो गए? एक मिथ्यात्व, 16 कषाय, तीन वेद में से एक वेद, हाँ 18 हुए ना। हाँ, हास्य और रति तथा अरति और शोक, इन दो युगलों में से कोई एक युगल, युगल यानी दो हो गए, 20। भय और जुगुप्सा 22 हो गए। इन 22 प्रकृतियों का एक बंधस्थान होता है, मिथ्यात्व गुणस्थानों में 22 प्रकृतियों का बंधस्थान। अब ये 22 में ऑप्शनल कहाँ है? वेद में से ऑप्शनल है और हास्य रति में से ऑप्शनल है, बाकी तो फिक्स है। खाली जो डरता है बहुत उसी को भय बनता है, ऐसा कुछ नहीं, वो निरंतर बनता है। हम करेंगे क्रोध और बंधेंगे मान, माया, लोभ सब, क्योंकि एट ए टाइम क्रोध ही जीव जो है, अभी जिसको क्रोध हो रहा है उसको अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन चारों का क्रोध हो रहा है, कर रहा है चार प्रकार के क्रोध और बन रहे 16 प्रकार की कर्म प्रकृतियां। वो लोभ कर्म भी बन रहा है, माया कर्म भी बन रहा है, मान कर्म भी बन रहा है, ख्याल है ना, ये ऐसा बंध का और हृदय का ये सब ऐसा चक्कर चलता है। देखो 22 प्रकृतियों का बंध स्थान है, इन 22 प्रकृतियों का बंध करने वाले जीव का एक क हुआ है, का करना उसको, प्रकृतियों का, एक ही भाव में अवस्थान है। नीचे उसका अर्थ करते हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय, ये 17 ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ध्रुवबंधी यानी जब तक उनकी विच्छित्ति नहीं होती है तब तक निरंतर प्रति समय उनका बंध होता ही रहता है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको ये सभी प्रकृतियां हर समय बनती आ रही हैं। जो सम्यक पे हो जाएगा वो तो अमुक जितने गुण स्थान में जाएगा उतनी उसकी प्रकृतियों का बंधक की विच्छित्ति हो जाएगी, समझे? क्योंकि उदय के समान बंध की अपेक्षा परस्पर में उनका कोई विरोध नहीं है, इसलिए इनके साथ में एक तरह इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एक तरह नहीं, इनमें से एक, ऐसा नहीं लिखा है, ये सभी की सभी बनती है। स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन तीन वेदों का तथा हास्य रति और अरति शोक, इन दोनों युगलों का उदय समान बंध के साथ भी विरोध है। अभी इसकी बात हम कल करेंगे, क्योंकि अभी एक शब्द है उदय के समान बंध के साथ विरोध है, उसका अर्थ करेंगे, क्योंकि उदय कहाँ तक है और बंध कहाँ तक है उसकी अपेक्षा अलग अलग होती है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। ये 21 का अर्थ वहां से हम दोबारा ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होढो।